ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में ओएबीओ भगवद गीता। कल हमने अध्याय 7 कंप्लीट किया था और अध्याय 7 के अंत में हमने इसको देखा था कि भगवान ने अध्याय 8 के कुछ तथ्यों को भगवान ने उपयोग किया था, जैसे ब्रह्म शब्द, अध्यात्म शब्द, कर्म और अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव, ये शब्द भगवान ने उपयोग किए थे श्लोक नंबर 29 और 30 में। तो अर्जुन, इन शब्दों को जो भगवान ने उपयोग किया था, उन शब्दों का और डिटेल में ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे कि इनका क्या मतलब है। तो अर्जुन इस अध्याय के प्रारंभ में ही, पहले श्लोक में ही अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म का मतलब आत्मा क्या है, और कर्म क्या है, कर्म इन द सेंस सकाम कर्म क्या है, और अधिभूत क्या कहलाता है, अधिभूत मतलब भौतिक जगत, और अधिदैव क्या कहलाता है, और अधियज्ञ क्या कहलाता है। इस प्रकार से अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न है टोटल? ब्रह्म क्या है, परमात्मा, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, और यज्ञों का स्वामी कौन है, और एक और प्रश्न है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति भक्ति में लगे रहते हैं वो आपको कैसे जान पाते हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने टोटल ये प्रश्न पूछे हैं, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, और मृत्यु के समय किस प्रकार से उस व्यक्ति का क्या होता है, जो मृत्यु के समय वो आपको कैसे याद करता है, उसका क्या डेस्टिनेशन होता है। तो ये अर्जुन के कुछ प्रश्न थे जिनसे अध्याय प्रारंभ होता है। वो इस पूरे अध्याय में 28 श्लोक तक, पूरे अध्याय में 28 श्लोक हैं और पूरा अध्याय इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने बताया है। शुरू के जो 4 तथ्य हैं, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, आदिभूत, ये तो भगवान जल्दी आंसर दे देते हैं। उसके बाद पूरे अध्याय में भगवान डिस्क्राइब करते हैं कि मृत्यु के समय उनको कैसे याद किया जा सकता है, और उससे कनेक्टेड कुछ कुछ थीम हैं जो कि इस अध्याय में आते हैं। तो पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा और फिर भगवान तुरंत 30वें श्लोक से उत्तर देना चालू कर रहे हैं। और अर्जुन ने एक शब्द उपयोग किया है भगवान के लिए यहाँ पे, मधुसूदन। मधुसूदन शब्द का उपयोग अर्जुन ने पहले भी किया था अध्याय 2 के प्रारंभ में कि हे भगवान, आप मेरे संदेहों को खत्म करिए, क्योंकि आपने मधु जैसे राक्षस को खत्म किया है, इसी तरह से मेरे संदेह भी एक राक्षस के समान है, डाउट, उसको भी आप खत्म करिए। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे मधुसूदन शब्द उपयोग कर रहे हैं। और इस श्लोक में प्रयाण काले शब्द भी उपयोग हुआ है, जिसका मीनिंग होता है कि मृत्यु के समय कैसे कोई भगवान को जान सकता है, क्योंकि मृत्यु का समय नेचुरली सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहता है। एक राजा कुलशेखर है, उन्होंने प्रार्थना भी की है इस तरह से कि अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ तो ऐसा अच्छा हो कि मेरी मृत्यु अभी हो जाए, क्योंकि मरते समय हो सकता है मेरे गले में इतना ज़्यादा कफ हो, मैं बोल नहीं पाऊँ तो मैं आपको याद नहीं कर पाऊँ। इसलिए ऐसा करिए कि अगर मैं आपके चरणों का चरण कमलों का चिंतन करते हुए अभी मर जाऊँ तो मुझे विश्वास है कि मैं आपके प्रति भक्ति को पूर्ण कर पाऊंगा, क्योंकि मृत्यु के समय कोई भरोसा नहीं, हमारा शरीर हमारा साथ देगा कि नहीं, या बेहोश हो जाएंगे या कफ होगा या बोल भी पाएंगे कि नहीं, कौन से शरीर के इंद्रिय काम करेंगे। इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अर्जुन ने हम सभी का प्रतिनिधित्व करके ये प्रश्न किया है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अध्यात्म में लगा रहता है वो कैसे आपको जान पाता है। तो भगवान सूर्य के प्रश्नों का उत्तर जल्दी दे देते हैं, उसके बाद इसका आंसर देने में भगवान थोड़ा टाइम व्यतीत करते हैं। तो तीसरे श्लोक में भगवान आंसर देते हैं, सिंपल सिंपल आंसर है, अक्षरम ब्रह्म परमम, मतलब अविनाशी जीव को ब्रह्म बोला जाता है। जीव मतलब आत्मा जो है दिव्य जीव, जो कि भौतिक संसार में आया है और जो भगवान के धाम में है वो भी, इस प्रकार से जीव को ब्रह्म बोला जाता है, उनके स्वभाव को अध्यात्म बोला जाता है, अध्यात्म या आत्म बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, तो उसका मतलब है जीव और जीव का स्वभाव, और जीव के स्वभाव को अध्यात्म बोला जाता है। जीव के जब जीव भौतिक शरीर ग्रहण करता है तो भौतिक शरीर से संबंधित जो काम करता है उसको कर्म बोला जाता है, सकाम कर्म। तो तीन आंसर भगवान ने बहुत शॉर्ट में दिए। ब्रह्म का मतलब होता है जीव, जीव का जो स्वभाव है वो आत्म या अध्यात्म कहलाता है, और जीव जो भौतिक शरीर में जो कार्य करता है गतिविधि करता है उसको सकाम कर्म बोला जाता है। जीव भगवान को बोला, जीव जीव का जीव को ब्रह्म बोला जाता है, और पर ब्रह्म जो है वो भगवान का नाम है, पर ब्रह्म का मतलब भगवान है, और जीव भगवान दोनों अलग अलग हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म कभी भी पर ब्रह्म नहीं बन सकता है, जैसे हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है, इसी तरह से जीव जो है वो ब्रह्म है और भगवान पर ब्रह्म है। तो इस प्रकार से भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। और अगले श्लोक में भगवान बताते हैं अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ क्या कहलाता है। अधिभूत का मतलब होता है ये भौतिक प्रकृति है, इस भौतिक प्रकृति को अधिभूत बोलते हैं, और क्योंकि ये भौतिक प्रकृति निरंतर क्षर भाव, जैसे भगवान 15वें अध्याय में एक श्लोक बोलते हैं कि संसार में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, क्षर और अक्षर। तो क्षर मतलब जो हमेशा परिवर्तनशील होते हैं, तो ये भौतिक प्रकृति परिवर्तनशील होती है, इसको अधिभूत बोलते हैं। और भगवान का विराट रूप जो है, विराट रूप का डिस्क्रिप्शन 11वें अध्याय में आने वाला है, भगवान का जो विराट रूप है उसको अधिदैव बोला जाता है। संसार के देवता सभी देव उनके अंश होते हैं, सूर्य और चंद्र देव भी उनके अंश होते हैं। तो भौतिक भौतिक प्रकृति को अधिभूत बोलते हैं, विराट रूप को अधिदैव बोलते हैं, और अधियज्ञ बोलते हैं सभी यज्ञों के स्वामी को, परमात्मा। सभी यज्ञों के स्वामी भगवान विष्णु हैं। हमने आप लोगों को अगर याद होगा तो हमने तीसरे अध्याय में ये डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, कि तीसरे अध्याय में शायद 10वें श्लोक में इस तरह से आता है कि हमें विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के स्वामी भगवान विष्णु होते हैं। तो अधियज्ञ मतलब यज्ञ के स्वामी, तो यज्ञ के स्वामी भगवान विष्णु हैं, और वही विष्णु सभी के हृदय में है, तो इसलिए परमेश्वर को अधियज्ञ बोला जाता है। तो अधिभूत मतलब भौतिक संसार, अधिदैव मतलब विराट रूप। विराट रूप जो है वो परमात्मा के रूप से अलग है, विराट रूप इस एक भौतिक रूप के समान है, जिसमें हम भगवान के रूप को भौतिक तत्वों से एट्रीब्यूट करते हैं, और अधियज्ञ मतलब भगवान का विष्णु स्वरूप, परमात्मा स्वरूप। इसके बाद लास्ट प्रश्न बचा कि मृत्यु के समय भगवान को कोई कैसे प्राप्त करता है, मृत्यु के समय की स्थिति क्या होती है। तो इन चार जो श्लोक हमने अभी डिस्कस किए, इसमें भगवान शुरू के सारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, फिर लास्ट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर भगवान डिटेल में देते हैं। ऑलमोस्ट पाँच पाँच से लेकर 9 तक डायरेक्टली उसका आंसर देते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से उसको समझाते हैं। जैसे 5वें अध्याय में 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो भी अंत समय में उनको याद करता है वो शरीर को छोड़ने के बाद मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कई बार भगवद गीता में बताते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें संशय मत करो, क्योंकि भगवान इस तरह से आता है कि अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। ये शायद हमने पढ़ा पढ़ा है चौथे अध्याय में, कि जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, अश्रद्धधाना होता है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, और जिसके जो संशयात्मा होता है, जिसके अंदर डाउट होते हैं, उस व्यक्ति के लिए इस लोक में और परलोक में दोनों जगह नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना, जो ऐसा डाउटफुल व्यक्ति है उसको इस लोक और परलोक दोनों लोकों में उसके लिए कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि अंतकाले च मामेव, मृत्यु के समय जो व्यक्ति मुझे याद करता है, मुझे याद करके अपने शरीर को छोड़ता है, वो श्योर है कि वो व्यक्ति मद्भावम मेवे भाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अभी हम देख रहे हैं इस भक्ति योग के अध्यायों में एक हमने चीज़ देखी है कि भगवान बहुत जगह माम माम शब्द का उपयोग कर रहे हैं। दैट मीन्स भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। बहुत सारे लोग जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो माम शब्द को ट्रांसलेट करते हैं कि ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंदर कोई है, परंतु श्रील प्रभुपाद बताते थे कि कृष्ण के अंदर बाहर सब कुछ एक ही है, कुछ भी ऐसा नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। हमारे अंदर अलग अलग है क्योंकि हम आत्मा है, ऊपर शरीर है, परंतु कृष्ण के केस में ऐसा नहीं है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अंत काल में जो शरीर छोड़ता है मुझे याद करके, और भगवान को याद करने का तरीका क्या है, इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस अध्याय को, इस मंत्र को जो जप करके शरीर को त्याग करते हैं वो भगवान के पास जा सकते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है। इसके अगले श्लोक में भगवान नॉर्मल इंस्ट्रक्शन भी बता रहे हैं कि यम यम वाप स्मरण भावम, मृत्यु के समय व्यक्ति जो भी याद करता है वो उस भाव को प्राप्त करता है, सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के समय जो भी जिस वस्तु को याद करता है, जिस जिस भाव का स्मरण करता है, उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो ये जनरल प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ लास्ट थॉट, भगवद गीता का अंतिम विचार का सिद्धांत बोला जाता है, और ये हर समय अप्लाई होता है। जैसे एक बार इस्कॉन के एक सन्यासी कक्षा कर रहे थे, तो जब उन्होंने बताया कि नेशनलिस्टिक मूवमेंट के बारे में, आज भी मैं पढ़ रहा था उसको, श्रीमद् भागवत में आता है कि बहुत सारे लोग नेशनलिस्टिक मूवमेंट मतलब देशभक्ति इन सब वस्तुओं से ओतप्रोत होते हैं, पर आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाए तो ये अध्यात्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे एक कृष्ण इस्कॉन के एक सन्यासी हैं, वो इस तरह से उदाहरण देते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति भारत का बहुत बड़ा भक्त है, देशभक्त है, वो पाकिस्तान को उतना ही हेट करता है, घृणा करता है, क्योंकि नेचुरली जो भारत में रहते हैं वो पाकिस्तान से घृणा करते हैं, तो वो उसके मन में पाकिस्तान रहता है, मरते समय अगर वो पाकिस्तान के बारे में सोचता है तो पाकिस्तान में जन्म ले लेता है, और फिर पाकिस्तान में जन्म लेके भारत से घृणा करता है, तो भारत के जैसा जन्म ले लेता है, भारत में जन्म ले लेता है। इस प्रकार से टेनिस की बॉल के जैसा एक एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाता रहता है। तो ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि मृत्यु के समय हम किस चीज़ को ध्यान कर रहे हैं। मृत्यु के समय ऑब्वियसली जिसको हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे हमारा सबसे ज़्यादा आसक्ति है, उसी को हम याद करेंगे। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आसक्ति भगवान में इतनी ज़्यादा हो कि उससे ज़्यादा आसक्ति हमारी और किसी वस्तु में नहीं हो। जिस वस्तु में होगी वो वहाँ वो हम बन जाएंगे। जैसे लोग कभी कभी घर में कुत्ते पालते हैं, बहुत डेंजरस है, मरते समय अगर कुत्ते को याद रखा, कुत्ते का याद आ गया, कुत्ता सामने आ गया, तो हम अगले जन्म में कुत्ते बन जाएंगे। तो इसलिए भाग ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, लॉ ऑफ लास्ट थॉट। हमने इसका उदाहरण देखा भी है कि भरत महाराज की मृत्यु के समय वो एक डियर को देख रहे थे, हिरण को देख रहे थे, हिरण को बहुत आसक्त हो गए थे, और हिरण को ढूंढते ढूंढते उनका मृत्यु हो गया था। तो उनके मृत्यु के समय हिरण उनके सामने आया था, और हिरण को देखते देखते उनका मृत्यु हुआ, इसलिए भरत महाराज अगले जन्म में हिरण बन गए थे। तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि इस जीवन में इस तरह से भक्ति का प्रैक्टिस करें कि भगवान हमें ऐसे भगवान हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रिय हो, मृत्यु के समय भगवान की हमें स्मरण आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। इसलिए अभी जब भगवान इस तरह से बता रहे हैं तो अर्जुन अभी कुछ समय पहले चौथे अध्याय या पांचवें अध्याय तक अर्जुन कन्फ्यूज थे, क्योंकि उनको दिव्य ज्ञान या कर्म के बारे में उतना समझ में नहीं आ रहा था। तो भगवान जब ये श्लोक बता रहे हैं तो उनके मन में इस तरह से चल रहा है कि ये श्लोक के कारण अर्जुन हो सकता है फिर से ज्ञान के बारे में बात करे, कि मुझे तो सब कुछ छोड़ के आपके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए भगवान अगले श्लोक में अर्जुन के बिना पूछे उसके मन का डाउट दूर करते हैं, कि ऐसा नहीं कि अभी तुम दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाग जाओ, वो ठीक नहीं है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसलिए तुम्हारे लिए दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, माम अनुस्मर और युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को करो और मुझे स्मरण करो। केवल मुझे स्मरण करके युद्ध को छोड़ दो ये भी भगवान ने नहीं बोला, और युद्ध करो मुझे स्मरण नहीं करो ये भी भगवान ने नहीं बोला, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं डेंजरस हैं। हम भी अपने कार्य कर सकते हैं, ड्यूटीज कर सकते हैं, परंतु अगर भगवान को भूल जाएंगे तो सारे कार्य मरते समय जीरो हो जाएंगे। चाहे हम कितना भी बड़े बिजनेसमैन हो, कितना भी पैसे कमाए, अगर भगवान उसमें नहीं होंगे तो अगले जन्म में पता नहीं मनुष्य बनेंगे कि नहीं। अगर बनेंगे भी तो इसका कोई गारंटी नहीं कि इस जन्म के पैसे कमा के हम रख पाएंगे। और अगर हम भगवान को स्मरण करते हैं, अपने ड्यूटीज को नहीं करते हैं, तो भी एक इस तरह से रहता है कि भगवान, चूंकि हम इस ऐसी अवस्था में हैं कि भगवान को हम हर समय स्मरण नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, लोगों के पास टाइम है, परंतु ऐसे में भी मैं एक बार एक व्यक्ति से पूछ भी रहा था कुछ ही समय पहले, लॉकडाउन के बीच में एक भक्त से पूछ रहे थे कि आप कितनी 64 माला कर पा रहे हैं क्या। तो बोले नहीं, बोले थे प्रभु जी ऐसा नहीं कि 64 माला करने के लिए टाइम की ज़रूरत है, टाइम आप दे दीजिए परंतु 64 माला नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारी चेतना उतनी शुद्ध नहीं है तो ज़्यादा नाम लेना हमें बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए भगवान का नाम स्मरण करने के साथ साथ अगर हम सेवा करते हैं, अपने कर्तव्यों को करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, फिर ज़्यादा भगवान का नाम ले सकते हैं। फिर एक अवस्था ऐसी आती है ज़िंदगी में जब हम शुद्ध भक्ति के पास पहुँचते हैं, एडवांस भक्त बनते हैं, तब हम भगवान का नाम ज़्यादा ले सकते हैं उस अवस्था में। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को दोनों सलाह, दोनों चीज़ बता रहे हैं, माम अनुस्मर युद्ध चा, मुझे स्मरण करो और साथ साथ युद्ध करने के अपने कर्तव्य को करो। और अगली लाइन में बोल रहे हैं, मैं अर्पित मनोबुद्धि, अपनी बुद्धि और मन को मुझ में मुझे अर्पित कर दो। जैसे भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी मति को, मेरी मति की शादी मैं आपसे कराना चाहता हूँ, मति को अपनी डॉटर मानते हैं, मति का मतलब बुद्धि। तो भीष्म पितामह बताते हैं कि मैं अपनी मति का आपसे विवाह कराना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मेरी मति आप में लग जाएगी तो मेरी इंद्रियाँ भी आप में लग जाएंगी, क्योंकि मति के आधार पर इंद्रियाँ कार्य करती हैं। तो भगवान बता रहे अपनी मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, और इस तरह से अगर तुम करोगे तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, मनुष्य कर्तव्यों को करते करते भी हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है, इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा, अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। और अगले 2 श्लोकों में भगवान जो वो कॉन्सेप्ट जो भगवान कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट में इस तरह से है कि श्लोक नंबर 8 और 9, इन दोनों श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अभ्यास योग युक्त है ना चेतसा न अन्य गामिना। चेतना अगर किसी व्यक्ति की केवल भगवान में रहती है, किसी और जगह पे नहीं जाती है, और ऐसा कब होगा, जब केवल हम अभ्यास करेंगे। जैसे भगवान ने 6वें अध्याय में बोला था कि अभ्यास और वैराग्य से ये पॉसिबल है मन को नियंत्रित करना। तो अगर अभ्यास के द्वारा हम इस अवस्था में प्राप्त होते हैं कि अविचलित भाव से अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं, तो हम भगवान को प्राप्त करते हैं। और ये रास्ता अन्य गामिना, अन्य गामिना का मतलब होता है दूसरी जगह नहीं विचलित होना चाहिए। जब भक्त लोग भक्ति करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त अलग अलग वस्तुओं से आकर्षित हो जाते हैं, सामान्यतः गाइडेंस नहीं होने के कारण या अलग अलग वस्तुओं के कारण। कुछ लोग भौतिक वस्तुओं को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस का अगर चल रहा है तो ठीक है, बहुत बड़ी महामारी है संसार में, ये बात हम समझते हैं, परंतु मैंने देखा कि कुछ भक्त बहुत समय उसी की न्यूज़ देखने में लगाते हैं, उसके वीडियोज़ फ्लोट होते रहते हैं, और सोशल मीडिया पे डाउनलोड कर करके उसको वीडियो देखना कि कैसे इससे बाहर निकलना है, कैसे क्या करना है, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है। तो लॉकडाउन के समय घर पे बैठे हैं, परंतु पूरे दिन वो यही देखते हैं कि कोरोना वायरस से क्या हो रहा है। उसकी जगह पे उनको करुणा होता है, भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, ज़्यादा समय भगवान के लिए देना चाहिए, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग और घर में रहना और सेफ रहना, ये जो है ये तो हम कर ही रहे हैं, और इन सब चीज़ों को हम पालन कर रहे हैं अच्छे से, तो साथ साथ अभी हमें बहुत ज़्यादा चिंता में रह के ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं कोरोना वायरस क्या होगा, मुझे तो नहीं लग जाएगा। वास्तविकता में मृत्यु सभी को ही आनी है, आज नहीं तो कल। हम अपनी तरफ से सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकते हैं अपने आप को, परंतु मृत्यु तो आज नहीं तो कल कभी आने वाली है। इसलिए ज़रूरी है कि भगवान के लिए हम सिंसियरली प्रयास करें। जो ज़्यादा समय है लॉकडाउन का समय, उसमें हम अपनी भक्ति को तेज़ी से एडवांस करने की कोशिश करें, और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन से प्रिकॉशन हैं उनको हम पालन कर सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा भयभीत रह के पूरा समय उसी में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बीमारी के बारे में, क्योंकि कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, कोरोना के बारे में सोचेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा। तो मैं इसमें इररिस्पॉन्सिबल बनने का नहीं बता रहा हूँ, बट मैंने देखा कई भक्त टाइम वेस्ट करते हैं उसी के लिए, वही सब वीडियो देखते रहते हैं, उस पर रिसर्च करते रहते हैं, किस देश में कितने लोग मर गए, क्या हुआ, ये सब देखते रहते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप हर दिन 2-3 घंटे भगवद गीता भागवत पढ़िए, दो लेक्चर सुनिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, भगवान कृष्ण के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा समय इसके बाद आपको नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि जैसे ही ऑफिस खुल जाते हैं तो लोगों के पास बहुत काम आ जाता है, तो अभी इम्पॉर्टेंट समय है, इसलिए उसको उपयोग करना चाहिए भगवान की भक्ति में। और भगवान बता रहे हैं अपने मन को किसी और जगह पर नहीं लगाइए, किसी और जगह पे विचलित मत होने दीजिए। और अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान के ऊपर चिंतन किया जा सकता है, क्या क्या विधियां हैं जिससे भगवान के बारे में सोच के चिंतन किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचना है या उसको ध्यान करना है तो उसके कुछ ना कुछ एस्पेक्ट होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तभी हम उसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। तो भगवान अपने कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं 9वें श्लोक में, जिससे कि हम अपना अपना ध्यान भगवान के ऊपर लगा सकें। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। तो भगवान के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक तो भगवान कविम मतलब सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। पुराणम पुराणम मतलब बहुत प्राचीन है। अनुशासितारम अनुशासितारम मतलब भगवान नियंता है, वस्तुओं को नियंत्रित करने वाले हैं। और अनोरणीयम, संसार में जो वस्तुएं सबसे छोटी हैं उससे भी ज्यादा भगवान छोटे हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयम समन्विस्मरेद्या, कि भगवान सर्वज्ञ हैं, पुरातन है, नियंता मतलब नियंत्रक हैं, और अनोरणीयम मतलब छोटे से भी छोटे हैं, और अनुस्मरेद्य सदैव भगवान के, जो इस प्रकार से सदैव भगवान से सोचता है, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। भगवान सूर्य के जैसे तेजवान भी हैं और दिव्य हैं, तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान उनको सर्वज्ञ के जैसा मान के करे, और सबसे पुराने संसार के सबसे पुराने व्यक्ति के जैसा मान के करे, संसार के मालिक के जैसा माने, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे व्यक्ति के जैसे मान के करें, अचिंत्य और नित्य पुरुष के रूप में उनका ध्यान करें, क्योंकि भगवान सूर्य की तरह तेजवान हैं और भौतिक प्रकृति से दिव्य हैं। इस प्रकार भगवान का स्मरण करना आसान हो सकता है। तो ये तरीके भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से उन पर हम मेडिटेट कर सकते हैं। और इसके बाद अगले 4 श्लोकों में, 10, 11, 12, 13 में भगवान बताते हैं योग मिश्र भक्ति के बारे में। योग मिश्र भक्ति का मतलब होता है कि जो योगी लोग किस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं और किस प्रकार से अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो इसमें श्लोक में लिखा है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरम। जब योगी लोग अपना शरीर त्याग करते हैं तो ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, ओम शब्द का उच्चारण करके जब वो अपने शरीर को त्याग करते हैं तो परम गति को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ओम शब्द जो है वो भगवान, ओम शब्द जो है वो भगवान से संबंधित है, और ओम भगवान के निराकार रूप को प्रदर्शित करता है। वास्तविकता में ओम और हरे कृष्ण मंत्र में कोई अंतर नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र और ओम जो है वो समान है, परंतु भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं जिससे कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ओम भी भगवान का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो सामान्यतः योगी लोग ओम का उच्चारण करते हैं और भक्त लोग हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं। और योगी किस प्रकार से शरीर त्याग करते हैं वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेना चाहिए। प्राण को अपने दोनों भौहों के बीच में स्थिर करते हैं। हमारे शरीर में हम जानते हैं 6 चक्र पाए जाते हैं, उसमें से एक चक्र जो दोनों भौहों के बीच में होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में अपने प्राण को ले जाके अपनी योग की शक्ति से और भगवान का स्मरण करते हैं, परमेश्वर का स्मरण करते हैं, इस प्रकार से भगवान को प्राप्त करते हैं। तो षट चक्र योग जो पद्धति है चक्रों को जागृत करना, आप लोगों को ध्यान होगा जब करीब 20 साल पहले गायत्री महाविज्ञान की पुस्तक में से एक सीरियल बनाया गया था शक्तिमान के नाम से। शक्तिमान बच्चों में बहुत फेमस था उस समय। तो शक्तिमान में ये प्रोसेस उपयोग किया जाता है षट चक्र योग। भले ही वो धारावाहिक जो था वो काल्पनिक था, परंतु उसमें जो पद्धति थी चक्रों को जागृत करने की, वो पद्धति गायत्री महाविज्ञान पुस्तकों में आती भी है और शास्त्र में भी लिखी हुई है किस प्रकार से चक्रों को जागृत किया जाता है जिससे सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। महर्षि अगस्त मुनि, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, इनको ये सिद्धियां प्राप्त थी। ब्रह्मर्षि थे वो और दुर्वासा ऋषि, ये सब इन सिद्धियों के मालिक थे। तो ऐसे योगी जो है वो षट चक्र को जागृत करते हैं और फिर भौहों के बीच में अपने प्राण को केंद्रित करके भगवान को स्मरण करके भगवान के धाम में वापस जाते हैं। पर इसमें अंत में आ रहा है कि चाहे योगी हो चाहे भक्त हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिना प्रैक्टिस के व्यक्ति भगवान को मृत्यु के समय स्मरण करे। जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम जिंदगी भर तो पाप करेंगे फिर लास्ट में भगवान का नाम याद कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ये लिख के ले सकते हैं। क्योंकि भगवान इस तरह से, भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि जो कोई व्यक्ति उनको चीट नहीं कर सकता, जो व्यक्ति भगवान को चीट करना चाहता है वो खुद ही चीट हो जाता है। तो इसलिए चाहे वो षट चक्र योग हो या भक्ति योग हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मृत्यु के समय हम एकाएक भगवान को स्मरण कर पाएंगे अगर हमने जिंदगी भर प्रैक्टिस नहीं किया है। तो लाइफ टाइम प्रैक्टिस के बाद ही हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं मृत्यु के समय। और जो वेदों को जानते हैं, ओमकार का उच्चारण करते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और कैसे मुक्ति को प्राप्त करते हैं वो बारे में श्लोक में भगवान बता रहे हैं। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करते हैं, मतलब इंद्रियों की इच्छाओं को खत्म करते हैं, मन की इच्छाओं को खत्म करते हैं और मन को प्राणवायु में केंद्रित करके योग में स्थापित करते हैं। ये भाषा हमारे लिए बहुत टेक्निकल हो सकती है क्योंकि सामान्यतः कलयुग में इस प्रकार का योग पद्धति अपनाना बहुत कठिन है और इसको बताने के लिए शिक्षक भी कम है। तो षट चक्र योग सिद्धि जो है बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। कुछ बिरले लोग हो सकते हैं लाखों में से एक, परंतु सामान्यतः लोग इसको नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ भक्ति योग जो है इससे भी अच्छा प्रोसेस है और बहुत सरल भी है, जैसे अगले अध्यायों में, अगले चैप्टरों में आएगा। क्योंकि भगवान ये 13 श्लोक तक योगी के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद अगले 2-3 श्लोक भक्त के बारे में बताते हैं। जैसे 14वें श्लोक में भगवान ने इसलिए बताया, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान बताते हैं कि ठीक है योगी इस तरह से जाते हैं, परंतु मेरे भक्तों को इतनी कठिनाई नहीं होती, बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं। सुलभा, सुलभ का मतलब बहुत आसानी से भक्त मेरे पास आ जाते हैं। कौन से भक्त जो भगवान के पास जाते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं? अनन्य चेता है सततम। अनन्य चेता मतलब हमेशा अनन्य रूप से मेरा स्मरण करते हैं। अनन्य सततः चेतम यो माम स्मृति नित्य सह। नित्य मतलब हर समय, क्षण, मोमेंट आफ्टर मोमेंट हमेशा मेरा स्मरण करते हैं। तस्य हम सुलभ प्रार्थ, ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत सुलभ हो जाता हूँ। आज मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था, 10वें स्कंद में कुछ लास्ट के चैप्टर्स पढ़ रहा था। तो उसमें भगवान का डिस्क्रिप्शन होता है, भगवान जब कुरुक्षेत्र जाते हैं अपने वंश के साथ, यदुवंश के साथ, तो साथ में वृंदावन से, वृंदावन के भक्त भी वहाँ पे आते हैं। जब उनको पता चलता है कि भगवान कुरुक्षेत्र में हैं, तो वृंदावन के लोग भगवान से बहुत समय से बिछो को पालन कर रहे थे, कई साल से भगवान को उन्होंने देखा नहीं था, तो भगवान को देखने के लिए आते हैं। और वहाँ पर भगवान अपने भक्तों से बोलते हैं, गोपियों से भी बोलते हैं कि अभी आप लोग मेरे साथ द्वारका चल सकते हैं। पर गोपियां भगवान से बताती हैं कि वास्तविकता में द्वारका में आप राजा के समान हैं और द्वारका में महल में रहने से हमें वो फीलिंग नहीं आएगा जिस प्रकार से हम वृंदावन में आपके साथ व्यवहार करते थे, क्योंकि वृंदावन में आप राजा नहीं थे, वृंदावन में आप केवल गाय चराने वाले थे। तो हम चाहते हैं कि आप वृंदावन आइए और हम उसी जगह पर उस आपके साथ फिर से लीलाएँ करेंगे। और हम वृंदावन में रह के आपको निरंतर याद करना चाहते हैं किस प्रकार से आप हमारे साथ लीलाएं करते थे। तो भगवान उसके उत्तर में बताते हैं कि वास्तविकता में आपकी जो स्थिति है वो सबसे ऊंची स्थिति है वृंदावन वासियों की। भगवान बताते हैं कि अगर आप मुझे इस तरह से हमेशा याद करेंगे तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और हम जानते भी हैं कि भगवान वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। जब भगवान वृंदावन से बाहर जाते हैं तो वासुदेव के रूप में जाते हैं। नंद बाबा के पुत्र कृष्ण हमेशा वृंदावन में निवास करते हैं। तो भगवान को जो लगातार स्मरण करते हैं उनके लिए भगवान के पास जाना बहुत सुलभ हो जाता है। बाकी लोगों को बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, ओम ओम का उच्चारण करना और चक्रों को जागृत करना, अलग अलग समय को देखना, परंतु भक्तों को इतना कठिन नहीं होता है। भगवान बताते हैं कि उनके लिए बहुत आसानी से मेरे चिंतन करने से वो मेरे पास आ जाते हैं। सतत और नित्य चिंतन करने से भक्त मेरे पास आ जाते हैं। इसी अध्याय में भगवान आगे बताने वाले हैं कि भक्तों को पता होता है कि कौन सा समय शुभ है कौन सा समय अशुभ है। जैसे हम जानते हैं कि दक्षिणायन में जो शरीर त्याग करते हैं वो अशुभ होता है, उत्तरायण में शरीर त्याग करते हैं तो शुभ होता है, ऐसे अलग अलग नक्षत्र होते हैं। परंतु भगवान बताते हैं भक्तों को यह सब पता होता है परंतु भक्त लोग उसकी फिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि भक्तों को लेने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, अपने दूतों को भेजते हैं। तो भक्त अपनी शक्ति से भगवत धाम नहीं जाते हैं, वो भगवान की कृपा से जाते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, फिर भगवान खुद विष्णु दूतों को भेजते हैं, वैकुंठ वैकुंठ से अपने अपने दूतों को भेजते हैं, या भगवान स्वयं आते हैं। तो भक्तों को इन सब चीज़ों की चिंता की जरूरत नहीं होती है कि किस समय देह त्यागें या कहाँ पे देह त्यागें। अगर कोई बहुत एडवांस भक्त है तो वो जहाँ पे भी देह त्यागेगा भगवान के धाम में वापस जाएगा। भगवान लिख भी रहे हैं अगले श्लोक में, 15 नंबर श्लोक में, कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भगवान बता रहे हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म, जो लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करने का मतलब जो हमेशा भगवान को स्मरण कर सकते हैं, उनके आदेश पे अपना जीवन जीते हैं, हमेशा उनको स्मरण करते हैं, वो कभी भी इस संसार में वापस नहीं आते हैं और परम गति को प्राप्त करते हैं। उसके अलावा कोई कितना भी प्रयास करे तो परम गति को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्रह्म लोक से लेकर नीचे के लोकों तक सभी लोकों में दुख प्राप्त होता है। पुनरावर्तिनोर्जन, हर हर लोक में दुख प्राप्त होता है, परंतु जो मुझे प्राप्त करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो देखिए भगवान किस तरह से प्रूफ कर रहे हैं इस चैप्टर में कि योग मिश्र भक्ति या सामान्य अष्टांग योगी से भक्त बहुत महान होते हैं, क्योंकि अष्टांग योगी को इस संसार से बाहर जाने के लिए बहुत प्रयास की जरूरत पड़ती है, जबकि भक्त जो है केवल भगवान के स्मरण से जा सकते हैं। तो 10 से 13 श्लोक तक भगवान ने योग मिश्र भक्ति को बताया कि जो योगी भी हैं योग के द्वारा भक्ति में आते हैं, और 14 से 16 तक भगवान ने शुद्ध भक्ति को बताया, जो कि भगवान के भक्त जैसे वृंदावन के भक्त हैं, वैकुंठ के भक्त हैं, वो शुद्ध भक्त को आते हैं। और योग मिश्र भक्त मतलब जो अष्टांग योग और भक्ति को मिश्रित करके कार्य करते हैं। तो 16वें श्लोक तक भगवान प्रूफ करते हैं कि शुद्ध भक्ति से ऊंचा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगले 5-6 श्लोकों तक, ऑलमोस्ट 6 श्लोक तक भगवान आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार से भौतिक संसार टेम्परेरी है, आध्यात्मिक संसार परमानेंट है, और आध्यात्मिक संसार कैसे भौतिक संसार से हमें डिटैच रहना चाहिए, ये भगवान डिस्क्राइब करेंगे इन 6 श्लोकों में। तो 16 नंबर श्लोक में भगवान ऑलरेडी ये बता रहे हैं। 17 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस संसार का अस्तित्व क्या है और संसार का टाइम पीरियड क्या है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांता ते हो रात्र विदो जना। हमारी गणना के आधार पर ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। एक युग मतलब जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो कलयुग 4,32,000 साल का है, इससे डबल जो है वो त्रेता युग होता है, इससे इससे 3 गुना द्वापर युग होता है, इससे 4 गुना सतयुग होता है। तो अगर सबको मिलाते हैं तो रफली 43 लाख साल का एक चतुर्युग बनता है। ऐसे 1000 चतुर्युग मिलके भगवान के ब्रह्मा के 12 घंटे बनते हैं, और ऐसे एक और 1000 चतुर्युग मिलके ब्रह्मा के 12 घंटे मतलब रात बनती है। तो वो इस श्लोक में लिखा है कैलकुलेशन। इस श्लोक के आधार पर अगर हम देखें तो ब्रह्मा का लाइफ अमर के जैसा लगता है, परंतु ये ब्रह्मा का पूरा जीवन विष्णु जी के एक सांस लेने में खत्म हो जाता है। विष्णु जब सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर सांस जब जब सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकलता है, जब सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। और ब्रह्मा के जो 100 साल हैं वो केवल सांस लेने और छोड़ने के बीच का समय है, और ब्रह्मा के 100 साल हम देख सकते हैं कितने बड़े हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जब हम भगवान के साथ डील कर रहे हैं, भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान कृष्ण इस संसार के मालिक हैं, ब्रह्मा शिव रुद्र ये सभी भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, वो उनको नहीं समझ पाते हैं, भगवान को प्रयास करने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। तो हमारी गणना के अनुसार 1000 चतुर्युग मिलके ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की एक रात भी होती है। और जब ब्रह्मा के दिन में सृष्टि होती है और जब रात होती है तो फिर सभी लोग अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। दिन के शुरू में सभी लोग व्यक्त बनते हैं और रात में अव्यक्त में हो जाते हैं। और जब रात में विलीन होते हैं तो किसी जीव से पूछा नहीं जाता कि उसकी क्या इच्छा है, वो जीव उसके कर्मों के आधार पे ब्रह्मा की रात में विलीन हो जाते हैं। करोड़ों साल तक जब ब्रह्मा सोते हैं, मतलब एक रात मतलब 12 घंटे तक अगर ब्रह्मा सोते हैं, तो तब तक वो जीव अप्रकट रहते हैं, और फिर जब ब्रह्मा सुबह जाग के उठते हैं तो फिर वो फिर से प्रकट होकर फिर से अपने काम कार्य को करने लगते हैं। जीवों का जो कर्म का साइकिल है वो चलता रहता है, ब्रह्मा के सुबह होने के बाद फिर से जीव उस कर्म को पूरा करना चालू कर देते हैं। तो ये तथ्य जब किसी भक्त को पता चलता है तो नेचुरली उसको फीलिंग आता है कि कृष्ण भावना में स्वीकार करना चाहिए, और जल्दी से ये जो साइकिल चल रहा है, जन्म मृत्यु का जो साइकिल चल रहा है, इससे छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि ये चक्र के जैसा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जब तक ये चक्र चलता रहता है, इस चक्र को कहाँ पे तोड़ा जा सकता है वो हमें समझना होगा, कि ये चक्र जन्म से ही तोड़ा जा सकता है। जैसे जन्म के बाद बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु आती है, मृत्यु के बाद हमें नया शरीर मिलता है। नए शरीर मिलने का क्या कारण होता है? पिछले शरीर में जो हमने कर्म किए हैं, उस कर्म के आधार पर हमें नया शरीर अलॉट किया जाता है। तो अगर हम किसी जन्म में इस प्रकार से कर्म करें कि उन कर्मों का कोई भौतिक फल नहीं हो, और जितने भी भौतिक फल हैं वो फल नष्ट हो चुके हों उसी जन्म में, तो मृत्यु के बाद उसको अगला शरीर नहीं मिलेगा, भौतिक शरीर नहीं मिलेगा, फिर वो आध्यात्मिक शरीर उसको मिलेगा। तो यही क्लू है, अगर हम लाइफ टाइम भक्ति के कार्य करते हैं और भक्ति के कार्यों से हम अपने भौतिक फलों को खत्म कर देते हैं, तो जब अगला जन्म होगा तो हमारा आध्यात्मिक जन्म होगा। आध्यात्मिक जन्म मतलब भगवान के धाम में जन्म होगा, फिर हमें यहाँ पे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है। और जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो सभी के सभी संहार हो जाते हैं, और फिर करोड़ों साल तक विष्णु के गर्भ में रहते हैं, फिर बाहर निकल के आते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, इससे इससे ऊपर मेरी एक प्रकृति है जिसको आध्यात्मिक प्रकृति बोला जाता है। परत तस्मास्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन। जब ये पूरा संसार खत्म हो जाता है तब भी वो आध्यात्मिक संसार कभी भी खत्म नहीं होता है, इस तरह से भगवान बता रहे हैं। और उसी भौतिक प्रकृति को कुछ लोग अव्यक्त बोलते हैं, कुछ लोग अक्षर बोलते हैं। इस अध्याय का एक और नाम है अक्षर पुरुषोत्तम योग। कुछ कुछ लोग बताते हैं कि अक्षर पुरुषोत्तम का मतलब अलग अलग मतलब बताते हैं, परंतु यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अक्षर का मतलब ऐसे जीव जिनका पतन नहीं होता है, जैसे वो आध्यात्मिक संसार में जो निवास करते हैं। और पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, मतलब भगवान स्वयं। तो इस अध्याय का ये मतलब है, क्योंकि भगवान भगवत प्राप्ति के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार से भगवत प्राप्ति की जाना चाहिए। इस अध्याय का टाइटल भी भगवत प्राप्ति है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्जुन ने जो पूछा है कि मृत्यु के समय कैसे उनको जान सकते हैं, उसके कारण भगवत प्राप्ति हो सकती है। श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी महाराज बताते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग लीड्स वन टू आर्ट ऑफ लिविंग। अगर कोई व्यक्ति ये सीख जाता है कि वो कैसे मरे तब वो मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, आर्ट ऑफ लिविंग से एटर्नल लाइफ हमें प्राप्त हो सकती है, नित्य जीवन प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं आध्यात्मिक संसार के बारे में, कि वो संसार अप्रकट है, अविनाशी है और परम गति है। संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, वो सभी उसी संसार में जाना चाहते हैं, उनकी गति वो संसार है, और उस संसार से जाने के बाद व्यक्ति को वापस नहीं आना पड़ता है, वो संसार मेरा धाम है। और भगवद गीता में एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैंने कई बार नोटिस की है, कि भगवान कई जगह पे पुरुष शब्द का उपयोग करते हैं, कुछ जगह पे माम का उपयोग करते हैं, कुछ जगह पे तम का उपयोग करते हैं। तो कई जगह पे भगवान ऐसा बताते हैं कि आप उन भगवान की पूजा करो, उस विष्णु की पूजा करो, उस परमात्मा की पूजा करो, और कई जगह पे बताते हैं कि मेरी पूजा करो। तो कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इससे कि अलग अलग लोगों का बोल रहे हैं क्या, परंतु भगवद गीता को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो जहाँ भी भगवान पुरुष या परमात्मा लिखते हैं, वहीं आसपास कहीं लिखते भी हैं कि मैं ही वो परमात्मा हूँ, हम अभी देख भी चुके हैं, इसी अध्याय में भी हमने देखा, पिछले अध्याय में भी देखा। पिछले अध्याय में भगवान बताते हैं कि तुम परमात्मा की पूजा करो, और मैं और परमात्मा एक ही हैं। इसी तरह से भगवान विष्णु और परम पुरुष जो भी ये शब्द उपयोग हो रहे हैं, ये भगवान कृष्ण स्वयं अपने लिए उपयोग कर रहे हैं। पर चूंकि भगवान कितनी बार अपनी तारीफ अपना अपने बारे में खुद बताएंगे, इसलिए भगवान को भी कई बार फील होता है कि मैं कितना बताऊं। 10वें अध्याय में भगवान बताते भी हैं, अथवा बहु नहीं ते न, मैं अपने बारे में कितना बताऊं, क्योंकि पूरा संसार ही मुझसे व्याप्त है। और कुछ कुछ आचार्यों ने कमेंट्री में लिखा भी है कि भगवान ने भगवद गीता इसलिए बहुत कम में बोला क्योंकि व्यक्ति जब अपने बारे में बताता है तो उसको थोड़ा झेप आती है कि मैं कितना अपने बारे में बताऊंगा। और भगवान को अपने बारे में बताना जरूरी है, नहीं तो संसार नहीं जानेगा। तो भगवान की इस इच्छा को जान के उनके भक्त लोग भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। इसलिए भगवद गीता में केवल 700 श्लोक आते हैं, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। क्योंकि भगवान अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताते हैं, परंतु उनके भक्त जब उनके बारे में बताना चालू करते हैं तो फिर वो रुकते नहीं, लगातार बताते जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएशन माना जाता है, भगवद गीता को ग्रेजुएशन स्टडी माना जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है। 18,000 श्लोक भगवान के ग्लोरिफिकेशन में लिखे गए हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो सबसे महान भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। भगवत धाम में कोई भी योग पद्धति, कोई भी तपस्या से नहीं जा सकते हैं। इनफैक्ट ब्रह्म संहिता में ऐसा लिखा भी है कि भक्तों के अलावा जो भी भगवत धाम में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, उनको गोलोक के चारों तरफ 4 पहरेदार होते हैं, 4 विष्णु दूत होते हैं या कुछ जीव होते हैं, या कई बार भगवान के अवतार भी होते हैं, जो योगियों को ध्यानियों को वहाँ से भगा देते हैं, जो कि गोलोक के अंदर जाने के लायक नहीं है। इसको इसी तरह से समझ सकते हैं, किसी को अगर किसी देश में घुसना है तो उसको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, अगर वीज़ा नहीं है तो कस्टम के ऑफिसर उसको हटा देते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं है तो भगवत धाम जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा वहाँ पे। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लिखा भी है भगवान के कौन कौन से, वैकुंठ लोक में भगवान के कौन कौन से रूप हैं, पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, शंकरसन, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, ये सब भगवान अपने अपने लोक में वैकुंठ में उपस्थित रहते हैं। इसके बाद 23 श्लोक से लेकर 28 श्लोक तक भगवान एक ही थीम पर कार्य कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान को प्राप्त करने में भक्ति सबसे ऊंची मानी जाती है। तो 23वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं ऐसे समय, ऐसे काल के बारे में जब कोई व्यक्ति शरीर त्याग करता है तो वापस आता है, और जब जब किसी दूसरा समय जब वो त्याग करता है तो वापस नहीं आता है। इन द सेंस कि कब अगर व्यक्ति शरीर त्याग करेगा तो उसको वापस आना पड़ेगा, और कब अगर वो त्याग करेगा तो वापस नहीं आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे समयों के बारे में भगवान इन श्लोकों में बता रहे हैं। तो कौन सा समय शुभ माना जाता है, जब व्यक्ति शरीर त्याग करता है तब वो भगवान के पास चला जाता है, वो समय है अग्निदेव का प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या उत्तरायण में। जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो परब्रह्म को प्राप्त करता है, भगवत धाम जाने के लिए भगवत धाम जा सकता है। अग्नि, प्रकाश, दिन का शुभ समय, शुक्ल पक्ष या उत्तरायण में जब सूर्य होता है तब वो परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र से लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना रहती है। तो इस समय में जो शरीर त्याग करते हैं वो वापस नहीं आते हैं। और इसके अलावा जो योगी धुएं में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में या दक्षिणायन में शरीर त्याग करते हैं, वो चंद्रलोक को जाते हैं पर फिर से वहाँ से वापस आ जाते हैं। ये भी योगी होते हैं जो कि कर्मकांड और ज्ञान कांड में निपुण होते हैं, मृत्यु होने के बाद चंद्रलोक जाते हैं और वहाँ पे 10,000 साल तक भोग करने के बाद वो संसार में वापस आ जाते हैं, परंतु भगवत धाम वापस नहीं जा पाते हैं, इस श्लोक में बताया गया है। और शुक्ल पक्ष में प्रकाश के मार्ग से जो व्यक्ति जाते हैं वो वापस नहीं आते, अंधकार के मार्ग से जो जाते हैं वो वापस आ जाते हैं। इसके बाद 27वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान इसमें क्लेम करते हैं कि नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यंती कश्चन तस्मात सर्वेशु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, इसलिए तुम भक्ति में स्थिर रहो। हमने इसको अभी 5 मिनट पहले डिस्कस किया कि ऐसा नहीं कि भक्त लोग नहीं जानते हैं कौन से समय में शरीर छोड़ना चाहिए, कौन से समय में नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, परंतु उनको कोई मोहग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो भगवान की सुरक्षा में है। संस्कृत में इसको बोलते हैं रक्षे से इति विश्वास है, भगवान के रक्षण में उनको विश्वास होता है। वो केवल अपना समय भगवान के स्मरण में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, बाकी भगवान उनको देखते हैं। इवन इस संसार में भी हम देखते हैं, संसार में कोई सामान्य मालिक होता है जिस कंपनी में हम नौकरी करते हैं, तो हम अच्छे से काम करते हैं तो मालिक हमारी पूरी फैमिली का देखभाल करता है, सबका मेडिक्लेम पॉलिसी होता है, कोई भी बीमार होगा तो कंपनी उसको लिए पैसा देती है और बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटी होती हैं। तो संसार का सामान्य मालिक भी इस तरीके से अपने काम करने वालों का ध्यान देता है, तो भगवान क्यों नहीं देंगे। तो इसलिए भक्त जो हैं वो बेफिक्र होते हैं, भगवान की सेवा करना करते हैं और बाकी भगवान के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो इस मोहग्रस्त नहीं होते हैं इन सब वस्तुओं को ध्यान इन सब वस्तुओं को सोच के। भक्त को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो स्वेच्छा से मरेगा या दैववश से। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टप्रद है, इसलिए हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहने से भगवान जब डिसाइड करते हैं तब भक्त इस शरीर को त्याग देते हैं। इसके बाद अंतिम श्लोक इंपॉर्टेंट है, अंतिम श्लोक का हम तात्पर्य भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वेदेशु यज्ञेशु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो ये अंतिम श्लोक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति भक्ति को स्वीकार करता है उसको वेद वेद अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान, इन सब से जो पुण्य मिलता है उसका ऐसा नहीं कि वो इन फलों से वंचित हो जाता है, उसको भी ये सारे फल मिलते हैं। जैसे भक्ति को 100 1000 रुपये का नोट बोल सकते हैं, 1000 1000 का नोट बंद हो गया, अभी 2000 का नोट बोल सकते हैं। 2000 के नोट के अंदर 1000 का नोट भी होता है, 500 का भी होता है, 100 का भी होता है। इसी तरीके से भक्ति जब हम करते हैं तो उससे इन बाकी सभी वस्तुओं का पुण्य फल मिल जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई ट्रेन में जा रहा है और 10 रुपये का एक समोसा उसको बेच रहे हैं कोई लोग, तो समोसे की महक बहुत अच्छी आती है, दुकान शायद ट्रेन में वो लोग कुछ डालते भी हैं, अलग टाइप से कुछ डालते हैं, सोडा या कुछ डालते हैं जिससे उसकी स्मेल बहुत तेज आती है। तो अगर कोई व्यक्ति समोसा खरीद रहा है, स्मेल उसको बहुत अच्छी आ रही है, तो वो समोसा लेगा तो उसको अलग से समोसे की गंध को नहीं खरीदना पड़ेगा, समोसे के साथ साथ उसकी गंध आती है। और कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि आप मुझे 5 रुपये में केवल समोसा की स्मेल दे दो, समोसा नहीं चाहिए, तो वो उससे उसके साथ ही मिली रहती है। इसी तरह से भक्ति के साथ जो है दान, पुण्य, वेद, यज्ञ, तप, इन सब का फल भक्ति में रहता है। तो भक्त इसकी चिंता नहीं करते हैं कि उनको अलग से कितने अलग से दान पुण्य करना होगा, ये सब उनको पता रहता है। यह श्लोक 7वें 8वें अध्याय का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए मनोरंजन के लिए नहीं, चरित्र निर्माण के लिए होता है। जब भी भक्त गुरुकुल में जाते हैं, व्यक्ति गुरुकुल में जाते हैं तो वेदों का अध्ययन करता है, वेदों के अध्ययन से चरित्र निर्माण होता है और साथ साथ व्यक्ति सीखता है कि उसको जीवन में किस प्रकार से अपनी आजीविका चलाना है। इस तरह से वर्णाश्रम धर्म में जब व्यक्ति रहता है तो अपने आश्रम का पालन करके और अपने वर्ण का पालन करके वो भगवान विष्णु को संतुष्ट करके भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करता है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से गीता समझनी चाहिए। भगवान के बारे में अगर हमें श्रद्धा नहीं है तब भी अगर हम भक्त से भगवत गीता समझेंगे तो हमें श्रद्धा प्राप्त हो जाएगी। 4वें अध्याय में भगवान ने सबसे शुरू में यही बताया था। कि जो मुझे भक्ति के द्वारा समझते हैं वही मुझे समझ पाते हैं। जब भक्त की संगति प्राप्त होती है तो भगवद गीता का वास्तविक अध्ययन हमें प्राप्त होता है, और भक्त की संगति से हमें भक्ति प्राप्त होती है, और भगवान के क्रियाकलाप, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस प्रकार इस अध्याय में इस तरीके से फ्लो है कि अर्जुन के 7 प्रश्न हैं टोटल, और भगवान कुछ प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्दी दे देते हैं, अक्षरम परम ब्रह्म परमम, और एक प्रश्न जो है कि कैसे भगवान को मृत्यु के समय याद किया जाए, उसके लिए भगवान थोड़ा डिटेल में बताते हैं। तो 1 से 4 तक भगवान अर्जुन के प्रश्न हैं और कृष्ण उसके उत्तर देते हैं, और 5, 5 में से लेकर 9वें श्लोक तक कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे उनको याद किया जाए मृत्यु के समय, और साथ साथ कृष्ण ये भी बता रहे हैं कि मुझे याद करो और अपना कार्य करो। अर्जुन को बता रहे हैं, फेमस श्लोक है वो, माम अनुस्मर युद्ध च, योग मिश्र भक्ति। उसके बाद 10 से 13 तक भगवान बता रहे हैं कि कैसे योगी अपने ओम का उच्चारण करते हैं और भगवान के बारे में सोचते हैं, इस प्रकार से वो परम स्थान को प्राप्त करते हैं। उसके बाद अगले 3 श्लोकों में भगवान शुद्ध भक्ति को बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति योग मिश्र भक्ति से भी ऊपर है, और भक्त लोग जो अनन्य चेता सततम, जिस जो भक्त लोग इस तरह से याद करते हैं भगवान को, आसानी से वो भगवान के पास चले जाते हैं। उसके बाद अगले 6 श्लोकों में भगवान भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार की तुलना करके भौतिक संसार से वैराग्य की प्राप्ति के लिए बताते हैं, और उसके बाद अगले 5, 6 श्लोकों में भगवान ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन से समय अगर शरीर छोड़ते हैं तो भगवत धाम जाते हैं, कौन से समय छोड़ते हैं तो भगवत धाम नहीं जाते हैं, और लास्ट में बताते हैं कि ये भक्तों को इसकी चिंता नहीं होती है कि किस समय वो शरीर को छोड़ते हैं। और इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है वो भक्ति योग का बहुत विशेष चैप्टर है, 9वां अध्याय, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। इस चैप्टर को कल हम डिस्कस करेंगे, आप लोग इसको पढ़ के आ सकते हैं। मेरा एक विनती है कि जब आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं वो कागज़ पे लिख के रख सकते हैं, क्योंकि जब क्लास बीच में चलता रहता है तो प्रश्नों को देखने से क्लास का फ्लो टूट जाता है कि कोई कुछ प्रश्न पूछ रहा है, और उन प्रश्नों को याद रखना भी इतना आसान नहीं होता है क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ और वस्तुएं भी चलते रहते हैं। तो बेटर है प्रश्नों को लिख सकते हैं अपने पास, और ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में बाद में डाल सकते हैं, और हर दिन मैं पिछले दिन के जो भी कमेंट होंगे, उन कमेंट्स के जो क्वेश्चन होंगे, उनको मैं नेक्स्ट दिन आंसर कर सकता हूँ। तो उससे आसान रहेगा आप लोगों के लिए भी, और मुझे भी क्लास में फ्लो नहीं टूटेगा। तो अपने प्रश्नों को लिख के रखिए, और ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं, और नेक्स्ट दिन मैं उन प्रश्नों को डिस्कस कर सकते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ओके, कल हम अध्याय 9 डिस्कस करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप की जय।